कल्पतरुभ्यश्च कृता सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेषु वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरस्तु। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय सदभक्ताय नमो। भक्त्या विहीनाय पराधलक्ष्यै तृप्ताश्च कामादितरङ्गमध्यै कामयीं त्वां शरणं प्रपन्न वेणुमस्ते शरणारविन्दम्। ज्ञान प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकात्तरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽपि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान्नतोऽस्मि। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नय मां शरणन्ति के। भक्त्या विहीनापराधलक्ष्यैश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्देऽनुमस्ते शरणारविन्दम्। बताया था जो कथा तो ब्रह्म जी किया था, तो उसके उत्तर में वेदांत सूत्र में क्या लिखा है और ब्रह्म शब्द का तात्पर्य विभिन्न आचार्यों ने किस रूप में ग्रहण किया है और व्यास जी का क्या सम्मत है इस विषय में बदला गया। हरिप्रिय जी कहाँ गए? आ रहे हैं? शुभागमन कर रहे हैं? और आप बोलेंगे क्यों? यही करना है, यही करना होगा। भले है और कुछ नहीं हो, इसकी जरूरत है। जीससे जतह मने जीससे अस्य मने विश्वस्य विश्व की सृष्टि जिससे हुई आदि इत्यादि वो ब्रह्म है। फिर बोलो
ब्रह्म शब्द के तात्पर्य क्या चाहते हैं? क्या ब्रह्म शब्द के बाद होते हैं जीव आत्मा देव और ब्रह्म? ब्रह्म शब्द के
कहते हैं उपनिषद के सार भाग को, इस चीज को समझो। उन्होंने वेदांत का समन्वय किया है सूत्रों के माध्यम से। वेदांत कहते हैं उपनिषद को, उपनिषद के सार भाग को कहते हैं वेदांत। वेद का अंत माने सार। उसमें उन्होंने जितने वेदांत हैं उसकी कितनी शाखाएं हैं, कितने उसमें विचार हैं, साधारण आदमियों के लिए वो तो गम्य नहीं है। कहीं कह दिया जी आकार है, कहीं कह दिया ब्रह्म का आकार नहीं है इत्यादि। ब्रह्म क्या है? निर्विशेष है। कहीं कह दिया सभी से, साधारण आदमियों के लिए बोलना बड़ा बड़ी कठिन है। तुम लोगों को बहादुरी है जो थोड़ा थोड़ा इतना तो बोल रहा है। बहादुरी है, बहुत कठिन विषय है। बड़े बड़े विद्वानों का दांत खट्टा हो जाता है। तो वेदांत सूत्र व्यास जी ने लिखा है। वेदांत का जो सार भाग में जो विचार है उसका जो समन्वय नहीं साधारण लोग कर पाते हैं या उसका तात्पर्य क्या है, वेदांत सूत्र में उन्होंने चयन करके और अपना सूत्र बना करके उसका समन्वय किया। अब वो सूत्र जो कहते हैं उसको कहते हैं ब्रह्म सूत्र। उसमें पहला बतलाया, दूसरा ये बतला रहे हैं जन्मादर्श जता। अब इतने में शास्त्र में जहाँ जहाँ ब्रह्म के विषय में लिखा है अब सबको जो ले करके उसका सामंजस्य करेगा वो ब्रह्म सूत्र का ज्ञाता हो। इसलिए हमारा ऐसा कोई संप्रदाय नहीं है जिसमें कि संप्रदाय नहीं माना गया, आचार्य नहीं माना गया, जिस पर इसकी व्याख्या नहीं। अब ये सूत्र कहा जन्मादृश्य जता, अब ये देखना है कि श्रुति में कहाँ कहाँ इस पर ये मिलता है, तब तो उन्होंने उससे लेकर के लिखा है, इसलिए उसके लिए उदाहरण हमको लेकर के ये पैर मच्छुओं को ये समझ। तो इसलिए शास्त्रों से लेकर के उपनिषदों से ये मंत्र लेना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पर इस विषय में बतलाया गया कि ब्रह्म से ही जगत का जन्म स्थिति होती है। इसलिए अब हम उससे नारायण जी से अब तुम पुष्पियों से लेकर के बतलाओ ये व्यास जी ने क्यों लिखाई, तो कहाँ कहाँ पर है अब इसके लिए बतलाओ। जतो इमानी भूतानी, कहाँ का श्लोक है, मंत्र है, पर विचार करेंगे। से समझ करके आना, तब से हमारी बात को समझ सकेगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। सर्थ जाम साधन सायंकाल कालीय भजन, और इधर हुआ भाव। सायंकाल हो गया कितना छुवन्न, प्रातःकालीन पूर्वान्न, मध्यान्ह, अपराह्न और हो गया ये सायं। इसमें हो गया पहले हुआ श्रद्धा, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति और छठवा हो गया भाव। ये हो गया भाव। भावावस्था जब आती है तो कैसी स्थिति होती है, इसका ये वर्णन भक्ति विनोद ठाकुर जी कर रहे हैं। हम लोग अभी अनर्थग्रस्त हैं, अभी श्रद्धा के बाद भी अभी अनर्थ निवृत्ति भी हुई कि नहीं, तभी विषय को अंततः जान लेना चाहिए कि क्या हमारा उद्देश्य है। इसलिए इसको एक बार पढ़ रहे हैं। जब अनर्थ निवृत्ति होने के बाद में निष्ठा होगी और निष्ठा से परिपक्व होकर रुचि होगी और रुचि परिपक्व होकर के आसक्ति होगी, तो आसक्ति परिपक्व होकर के भाव अवस्था में आ सकती है। उस समय जिसकी ये स्थिति होगी उसके लिए चैतन्य महाप्रभु जी बतला रहे हैं, उसको संकलन कर रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी। नैनम गलदाशुधारया बदनम गदगद उद्धया कुलक निकितम बपुह कदा तव नाम ग्रहणे भविष्य। हे प्रभु, हे कृष्ण, आपके नाम ग्रहण करते समय मेरी ऐसी कब दशा होगी, ये प्रार्थना कर रहे हैं। हमारी कब ये दशा होगी, हमारी ये दशा हो तो हमारी ये कब दशा होगी, जबकि तो नाम ग्रहणे आप क्या नाम लेते हैं। नैनम गलदाशु धारे, नैनम गलद अश्रु धारया, आंखों से अश्रुओं की झड़ी लग जाएगी, धारा बहेगी। बदनम गदगद उद्धया और मुख मुख गदगद वाणी निकलेगी, की ज ज ज ज ग ग ऐसे बात, मुख से जो वचन निकलेंगे गिरा गदगद उद्धया गिरा पुलक निकितम बपु बपु शरीर पुलक से भर जाएगा, सब सर्वस्व पुलक उत्पन्न होगा। ऐसी मेरी कब नाम ले ले लेते लेते दशा हुई। अब इसको समझो कि ये हमारे लिए एक जीवन का उद्देश्य, हमारा ये हमारी ऐसी कब दशा, कब दशा होगी, जब तक कि अनर्थ निवृत्ति होने के बाद में निष्ठा निष्ठा से, रुचि रुचि से, आसक्ति आसक्ति से भाव नहीं होगा तो नहीं। ये जितने भी बतलाए गए हैं ये अष्टसात्विक विकार हैं। भावावस्था में प्रेम में जो अष्टसात्विक विकार होते हैं उसका थोड़ा 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 बहुत कम रूप में भावावस्था में भी वो अष्टसात्विक विकार होते हैं, किंतु बहुत थोड़े थोड़े होते हैं, ये बतलाएंगे। प्रेमनस्तु प्रथमावस्था भाव इति अभिधीयते, प्रेम की प्रथम अवस्था को भाव कहते हैं। सात्विका स्वल्प मात्र, अष्टसात्विक जो हैं भाव अश्रु पुलक रोमांच बेपथु और स्तंभ वज्वर्ण इत्यादि जो होते हैं ये स्वल्प मात्रा में होंगे। क्यों? कंपाशु पुलक आदि, कंप अशु पुलक आदि जो अष्टसात्विक विकार हैं प्रेम में अवस्था में पूर्ण रूप से होंगे, और स्नेहमान इत्यादि में राग अवस्था में पूर्णतर होंगे, और महाभाव उसके ऊपर अवस्थाओं में पूर्णतम से पूर्णतम होते चले जाएंगे। इसलिए भाव अवस्था में थोड़े से ये कभी कभी आंखों से आंसू पुलक होना, रोमांच होना, ये सब आएगा। तो उस समय में नयन गर्द पुलक क्यों होता है, आंखों में आंसू कब आता है? आंसू में आते हैं इसके दो कारण है, एक तो आनंद में, अत्यंत आनंद में, या अत्यंत दुख में। क्यों होता है? जब रति जीवो हृदय में जो रति है उसमें जो भाव है, जब माने भाव के द्वारा विभावित जो आत्मा, रति के द्वारा विभावित आत्मा, ऐसी आत्मा नहीं, क्यों, रति के द्वारा विभावित आत्मा जो है, जब जल का आश्रय करेगी कैसे, ये पांच चीजों को स्पर्श करती है, स्थिति जल भाव गगन समीर, अथवा संस्कृत में स्थिति आप तेज मरु जम, पृथ्वी को जब आश्रय करता है तो वो जड़ हो जाता है स्थिर, पानी को जब ये स्पर्श करेगा तो आंखों में से अश्रु आएगा, जब वायु को होगा तो पुलक होगा, कंप इत्यादि होगी, और क्या रह गया, तेज यदि होगा तो क्या होगा, और इसके बाद और क्या रह जाएगी, आकाश, तो क्या हो, मूर्छित हो जाएगा। ये बहुत गहन विचार है, अभी यही केवल समझो कि किसी विशेष स्थिति में जब आनंद होता है तो आनंद से अश्रु आते हैं, या अत्यंत गंभीर दुख होगा, शोक होगा, आरती होगी तो उससे चिंतन करते करते कृष्ण या कृष्ण के जो परिकर हैं उनका स्मरण करते करते चित्त में कुछ स्फूर्ति हुई, और वह साधक जो भावावस्था में प्रवेश कर रहा है स्फूर्ति में कृष्ण की किसी लीला को देखा, बड़ा ही अद्भुत रूप, चैतन्य महाप्रभु बतला रहे हैं हमारे गुरु ने मूर्ख देखी गुरु मोरे शासन करिला, मूर्ख देखे मुरे परिभाषा सुन। हाँ वेदांत दे, वेदांत निकाल में तुम जाओ, ये मंत्र तुमको दे दिया, ये करो। महाप्रभु कहते हैं मैं नहीं नित्य करता, मैं गाता नहीं, नाचता नहीं, हमको कोई दूसरा कराता है। मंत्र करते 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 गोपाल मंत्र करते 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 जो गुरुजी ने दिया, देखा जी एक श्याम रंग का बड़ा ही सुंदर लड़का मुरली बजाता हुआ पीताम्बर धारण किए हुए अलका इत्यादि से युक्त अद्भुत सुंदर रूप हमने देखे, देखते ही चित्त आकृष्ट हो गया और उसको पकड़ने के लिए मैं जा रहा, और जाते जाते वो आगे पीछे पीछे बंसी बजाता हुआ चल रहा, और जब मैं निकट में जा ही गया तो क्यों ही एक पेड़ के नीचे चित करके न जाने कहां अंतर ध्यान दिया। उस समय महादुख में पहले तो देखा जो बड़े आनंदित हुए, आनंद के आंसू, और जबकि वो छिप गए तो सिरह में एकदम आंसू हो गए, और हो करके हा कृष्ण कहते, आंखों में आंसू झरझर गिरने लगा, कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं, और थोड़ी देर के बाद में मूर्छित होकर के गिर गए। तो ऐसे ही कोई साधक जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी इस श्लोक की व्याख्या जुगाई संग निविचेन में लिखा है, देखिते देखिते भूली ये नहीं, देखते देखते मैंने क्या देखा, एक श्याम सुंदर बालक को देखा, और ऐसे ही इसका वर्णन था। तो ऐसे ही कोई साधक हो भावावस्था में कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करते करते उसको स्फूर्ति हुई, कृष्ण को देखा, उनके परिकर को देखा, और देखने से अत्यंत आनंद के आवेग में वो रोने लगा, या अंतर ध्यान होने पर वो रोने लग गया। तब नयनंगल दाशुधा, आंखों से आंसू की धारा आई, बदनंग गदगद उद्धया, बदन से एकदम जो गिरा निकलती है वाणी वो गदगद हो गई, पूर्ण उच्चारण नहीं होता। महाप्रभु जी जगन्नाथ नहीं कह सकते, ज ज ग ग कहते हुए आकुल व्याकुल होकर के मूर्छित होकर के गिर पड़े। उस समय अष्ट शास्त्री धिकार प्रबलतम रूप में गोपियों जैसा उनसे भी अधिक महाप्रभु में लक्षित होता है, शरीर में सारे कांटे जैसे निकले, कदम्ब के जैसे। कांटा क्यों निकलाया, ये पुलक कब होगा, इसलिए आश्चर्य को देखने से अत्यंत अधिक अतप्त हुए शरीर में कांटा जैसा रोमांच हो उठता है। इस तरह से यह दशा होगी, किंतु होगी भावावस्था में कैसी होगी, अल्प मात्रा में, और प्रेम की अवस्था में पूर्ण, और आगे के स्टेजों में कम से पूर्णतर होते पूर्णतम से और भी आगे बढ़ते हैं। ये राधा जी में सबसे अधिक होता है। यदि किसी को ऐसा देखो तो विश्वास सहज मत करो, हो सकता है कि प्रतिष्ठा के लिए ऐसा बनावट कर रहा हो, सच्चा ऐसा मिलना बड़ा कठिन है, इसलिए भक्ति स्वामी सिंधु में रूप गोस्वामी ने इसके लक्षण बताए। इस नैन से आंसुओं की धारा पुलक गदगद ईज के साथ में और एक चीज मिलाना होगा, क्या काल ये होना चाहिए। एक आदमी हठात हरि कथा सुनते सुनते उसको पुलक हो गया, रोमांच और रोने लगा, गिर गया, किंतु उसके जीवन में देखते हैं कि थोड़ा सा कष्ट आने पर क्या होता है, बिलबिला उठता है और हरि भजन छोड़ देता है। घर में आदमी कोई मर गया बस भजन तजन सब छोड़ दिया, बड़ा क्रोधित जल्दी से हो जाता है, भगवान का नाम भूल जाता है, सुना वृंदावन में बास कर रहे हैं, प्रतिज्ञा करके अब नहीं जाऊंगा। और सुना जी हमारा बेटा मर गया है, बेटी मर गई, हमारी स्त्री मर गई, हमारा पति मर गया, घर का कोई मर गया, तब वृंदावन छोड़ करके चल। तो इन लक्षणों को मिला करके देखना होगा कि सचमुच में ये ठीक है कि नहीं। इसलिए शांति रवर्ष काल इसकी बहुत बार व्याख्या मैंने की है। क्षोभ का कारण उपस्थित होने पर भी सब समय शांति बनी रहे, शांति बनी रहे मैंने की शांति, क्रोध उत्पन्न न हो, चित्त चंचल का होने का कारण उपस्थित होने पर भी विश्व का सारा अपना वैभव नष्ट हो जाने पर भी चित्त चंचल नहीं हो। हमने कोई चीज आरंभ किया ना? और बीच में किसी कारण से विघ्न पड़ गया, वो काम पूरा नहीं हुआ, तो मन कैसा होगा, खट्टा होगा कि नहीं, उसका नहीं होगा। आरंभ किया प्रभु की इच्छा से, हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ उनका चित्त नहीं खराब होगा, सब में ही सफलता देखेंगे, ये कोई बात नहीं। प्रभु की सेवा कर रहे हैं, सफलता असफलता हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस करेंगे हम उसके लिए पूरा प्रयत्न, नहीं तो कुछ गड़बड़ी हो। गुरु जी ने आदेश दिया, आदेश नहीं, किसी सेवा में हम लग रहे हैं, खूब सेवा कर रहे हैं। हमको याद आ जाती है एक, मैं परिक्रमा के समय में सब कुछ करता था, सारी व्यवस्था, हजार लोगों का खिलाना पिलाना, तंबू में रखना इत्यादि, परिवेशन इत्यादि कराना, सब कुछ ऊपर से नीचे तक करता था। तो एक बार हमने कहा गुरुजी से, ये परिवेशन करने के लिए कम से कम तो 150 नए ये चाहिए, पत्ता और छाछरा, और नौका चाहिए तब परिवेशन होगा ठीक से। तो गुरुजी ने सुन लिया, बस सुन लिया, बस और कुछ नहीं। हमने दूसरी बार कहा, फिर भी उन्होंने कुछ कहा नहीं। हमने कहा कि यदि नहीं सब आएगा तो हम परिवेशन में नहीं जाएंगे, तो वो हमारे तरफ में देखते रहे। और सचमुच में मैं ये सब व्यवस्था छोड़ करके चुपचाप बैठ गया जाकर, और उधर मैं हाहाकार मचने लगा, जब ये सारी सब व्यवस्था हो। तो गुरु महाराज जी ने किसी को, दो एक आदमी को कहा जल्दी से देख करके व्यवस्था, अब मैं नहीं गया। इसके बाद में सब हो गया, तो फिर हमको बड़ा क्लेश हुआ मन में, जो हमने गुरु जी की आदत किया। आखिरी काम तो हुआ, और मैं यदि मठ में नहीं आता तो काम नहीं होता। फिर उनके चरणों में जाकर के दूसरे दिन क्षमा मांगा और फिर काम में लग गया। यदि वैसा ही यदि कर करके मैं नहीं जाता और फिर भी नहीं सुनते और मैं छोड़ करके चला जाता, तो इसकी ये जिस अवस्था में आज हूँ वो रहता कि नहीं, सोचो। इसलिए चित्त को सब समय शांति, चित्त चंचल होने का कारण एक ही बार नहीं, एक बार और हुआ। एक आदमी, एक लड़का, नहीं लग रहा थी, एक लड़का एक समय एक लड़की को पकड़ लिया, मैंने उसको अच्छी तरह से पीट दिया अपने हाथों से, बड़ी जोर मारा, और गुरुजी जी जा रहे इसको अभी मठ में निकालिए, नहीं तो मैं अभी चला जाऊंगा, यही शर्त है, यदि इसको रखा तो ठीक है हम चले जाएंगे अभी। तो उन्होंने इस बार भी कुछ नहीं कहा। हम लोग जितने ब्रह्मचारी थे सब हमारा पक्ष लीजिए, इसको मठ में नहीं रखना है। अब हम लोग तो सब लोगों ने मिल करके तय कर दिया, यदि इसको नहीं हटाते हैं तो हम लोग मठ में नहीं रहेंगे, चले जाएंगे। किंतु उन्होंने नहीं हटाया। हम लोग चिंता कर रहे हैं कि क्या करें, अब मठ में छोड़ दें कि चले, हम लोग चिंता करने लगे। अब विशेष का मैं बड़ा भावुक। फिर मैंने कहा जैसे अब इस मठ में हमारा रहा, यदि ये सब जितने बदमाश लोग रहेंगे तो उसमें हम लोग क्या रहेंगे। फिर एक विचार आया जैसे अच्छा हमसे गुरु जी चालाक चतुर हैं, और कुछ जानते हैं कि वो कुछ नहीं जानते हैं, वो क्यों नहीं हटा रहे भाई, उनका हटाना बड़ा भारी कठिन है, जिसको शरण में लिया छोटी सी बात के लिए वो नहीं छोड़ सकते। यदि मान लिया कि उसको छोड़ दिया तो वो क्या करेगा, जाकर के सब समय वही काम करेगा और भ्रष्ट होकर के मर जाएगा। और उनके साथ में यदि किसी तरह से रहा तो उसके सुधार होने की गुंजाइश कुछ रहेगी, और ऐसा ही हुआ, अन्य तो चला जाएगा। फिर अपने मन को मैंने काबू किया, ऐसे ही अपने अनुभव की मैं बात कर। इसलिए क्षोभ का कारण, चित्त चंचल होने का कारण लाख आने पर भी भगवत भजन करने वाला व्यक्ति एकदम सुदृढ़ रहेगा। चाहे पृथ्वी उलट जाए, सूर्य टूट जाए करके नीचे गिर जाए, किंतु भक्ति संत किसी स्थिति में नहीं होंगे। यह है शांति अभ्यर्थ काल। इसलिए आप याद रखें, मठ एक अस्पताल है, इसमें तरह तरह के रोगी भर्ती हैं, गुरुदेव डॉक्टर जैसे। किसी को कहते हैं जैसे देखो इसको रसगुल्ला दो, और किसी को कहते हैं ऑपरेशन करो निकाल दो, किसी को कुछ किसी को कुछ, कुछ उपवास। भले ही हम रोगी लोग नहीं समझें किंतु डॉक्टर तो समझता है, इसलिए उन पर जब छोड़ा है तो छोड़ो, मन को स्थिर करके जैसे वो रख रहे हैं जाय विधि राखे राम। यदि वो सत्य गुरु हैं तो, और नहीं तो नकली गुरु हैं तो उनको छोड़ करके चले जाओ, कोई भी बात नहीं। अव्यक्त काल उत्तम, जो भगवान का भजन करेगा ऐसा भाव में उपस्थित हो जाएगा। जो भाव में उपस्थित हो गया वो चित्त शुद्ध होने का लाख कारण उपस्थित होगा। सुखदेव गोस्वामी को गाली दो, उनको कुछ करो, क्या होगा? हमारे गोस्वामी लोगों को कुछ भी कहो, कुछ भी प्रभाव नहीं। अव्यक्त काल उत्तम, एक सेकंड भी समय व्यर्थ नहीं जाएगा। श्रमणम कीर्तनम विष्णु स्मरण इत्यादि, विशेष करके तीन चीजों में, श्रवण में, कीर्तन में और स्मरण में, ये तीन अंग प्रधान। इन तीनों अंगों में भी पहले श्रवण, इसके बाद में कीर्तन, और कीर्तन के प्रभाव से स्मरण। ऐसा मालूम पड़ता है कि स्मरण ही प्रधान है भाव राज्य में, किंतु बिना कीर्तन के प्रभाव से नहीं होगा। इसलिए कलयुग में प्रधान होगा क्या? कीर्तन के प्रभाव से। एक मिनट सेकंड, बिना हरि चिंतन, बिना हरि नाम संकीर्तन के, बिना भगवत चिंतन के वो रह नहीं सकता है। यदि ऐसा है, ऐसा नहीं है, और कभी कभी आंख से आंसू आते हैं तो चल ये छल आंसू है, पुलक हो जाता है तो समझो जो ये ढकोसला ढोंगी आदमी है, इस चीज को समझना चाहिए। सब समय 24 घंटा कृष्ण के चिंतन, स्मरण और मनन में रहेगा, चाहे ऊपर से जो कुछ भी कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, किंतु जो भावावस्था वाला व्यक्ति है वो सब समय इन तीनों में सब समय लगा रहेगा। उसको समय नहीं, एक मिनट में मर जाएगा यदि चिंतन स्मरण कीर्तन न करे। विरक्ति, विषय में विरक्ति रहेगी, कहीं भी आसक्ति नहीं रहेगी। आसक्ति रहेगी वैष्णव और कृष्ण में, और कहीं हरि गुरु वैष्णव में। मान शून्यता, मान नहीं रहेगी, सबको छोड़ देना सहज है किंतु मान को छोड़ना बड़ा भारी असंभव। आसाम बंधन, कृष्ण जरूर मिलेंगे, आज मिलेंगे, कल मिलेंगे, मर में मिलेंगे जरूर, यह रखो दृढ़ता। क्यों? हमारे गुरु जी पक्के हैं, हमारा संप्रदाय पक्का है, हमारे इष्ट देव पक्के हैं, हमारे चैतन्य महाप्रभु जी पक्के हैं, हमारा परंपरा रूप सनातन इत्यादि से जो परंपरा अब तक आ रही है विशुद्ध और निश्चित रूप में, इसमें हम चाहेंगे हरे नाम, हरे नाम, हरे नामय व केवलम, ये तीन बार कहा गया, ये हमारे संप्रदाय की, इसलिए जरूर हमारा होगा, किंतु साधन नहीं करेंगे तो क्या होगा। इसलिए भावावस्था में जब पहुंच जाएगा तो आशा बंध, आशा हो समुत्कंठा, कब हो? जरूर मिलेंगे, ये निश्चिंत होकर के सोएंगे नहीं, उत्कंठा लगी रहेगी, कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, उसके लिए प्रयत्न करेंगे। नाम गाने सदा रुचि, सब समय नाम कीर्तन में रुचि रहेगी, जहीं कीर्तन हो रहा है वहां पर सुन करके चित्त उनका चुप ही हो जाएगा। इस तरह से नाम गाने सदाजु की आसक्ति सदगुणा ख्याने भगवान और भक्तों के गुणा गुण अनुवाद करने में एकदम लाख मुक्के हो जाएंगे। प्रति तत्वस्थ जहाँ पर कृष्ण की लीला स्थान है वहां पर अत्यंत अधिक प्रति हो, कभी राधा कुंड, कभी श्याम कुंड, कभी गिरिराज गोवर्धन, कभी नंदगांव बरसाना जमुना, कभी बंसी भट्ट की शीतल छैया, कभी भांडीर भट्ट में, कभी बरसाना के गहवर वन में, कहीं